और रह गई बात, अगर तुमने ये सोचा हुआ कि अल्लाह या उसका रसूल तुम्हारी मदद का मोहताज है, तो ये खुशफहमी निकाल दो दिल से, क्योंकि इल्ला तंसुरूहू, अगर तुम इनकी मदद नहीं करोगे, हु से कौन मुराद है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी सूरत हु से मुराद इस्लाम भी है, लेकिन देखा जाए तो इस्लाम की मदद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद थी। और तीसरी हु से मुराद अल्लाह की ज़ात भी है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं कहने की, इसलिए कि यहाँ मुराद बराह रात रसूलुल्लाह है। वक़द नसरहुल्लाह, तो अल्लाह ने तो उनकी उस वक़्त भी मदद की थी, यानी तुम रसूल की मदद नहीं करते तो उसको कोई परवाह नहीं, अल्लाह तो उसकी मदद उस वक्त कर चुका। इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू, जब काफिरों ने इनको मक्का से निकाल दिया था। सानियस्नैन, इस हाल में कि आप दो में के एक थे, दो में के एक कौन? एक आप और एक अबू बकर सिद्दीक। इस हुमा, जब वो दोनों, अब ये लफ्ज़ है कि हुमा, हमारे यहाँ नाम भी है ना हुमा, लेकिन हुमा का लफ्ज़ मानी क्या? दो, वो दोनों, हु हुमा हुम। जब वो दोनों थे फिल गारी, गार में, केव में थे, यानी उस वक़्त तो वो सिर्फ़ दो लोग थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह और ख़ुद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। इज़ यकूलु लिसाहिबिही, जबकि वो अपने साथी से कह रहे थे, ला तहज़न, गम न करो, इन्नल्लाहा माना, अल्लाह हमारे साथ है। फ़ानज़लल्लाहु सकीनतहू अलैहि, तो अल्लाह ने अपनी सकीनत उस पर नाजिल की। नोट कीजिए, पीछे हुमा थे दोनों, लेकिन यहाँ वाहिद के सीगे हैं, कि जो नबी के दिल पर तस्कीन थी वो अबू बकर के दिल पर नहीं हो सकती थी। ये अलग बात है कि उम्मतियों के नाते जितनी तस्कीन अबू बकर के होनी चाहिए थी वो थी, लेकिन सुकून नबी के दिल पे था। क्या हुआ? अल्लाह ने अपनी सकीनत नाजिल की उस पर, वईदहू, और उसकी मदद फरमाई, भी जुनूदिल्लम तरौहा, उन लश्करों के साथ जिन्हें तुम नहीं देखते। बास कहते हैं ये मकड़ी के जाले थे जो बुन दिए गए गार के दरवाज़े पे, बास कहते हैं फरिश्ते थे, बास कहते हैं रोब था, ये डिटेल बाद की बात है, लेकिन कह लीजिए कि अल्लाह को मदद करनी आती है, अल्लाह को अपने काम करने आते हैं। ये बहुत मुमकिन है कि आप एक दिन निकलें अल्लाह के रास्ते में, घर गंदा ख़राब छोड़कर, और आप सारा दिन अल्लाह के रास्तों में मारे मारे फिरें, और आप घर आएँ तो आपकी एक एक चीज़ अपनी जगह पर सेट हो, वल्लाह ये मुमकिन है। और अल्लाह कर दे अगर आप हैरत से मर ना जाएँ कि ये किया किसने। अल्लाह तो नामुमकिनात को मुमकिन बनाता है। इसी तरह आप ना निकलें और आप आके देखें सारे काम हो गए, ये अल्लाह के हाथ में है। वजह अल कलीमत अल्लज़ीन कफ़रुस्सुफ़ला, और काफरों की बात को पस्त कर दिया। यानी इस वाक़े का नतीजा क्या निकला? कि बिलाखिर काफिर ज़ेर हो गए, और पूरे जज़ीरा नुमा अरब के अंदर अल्लाह का दीन गालिब हुआ। व कलीमतुल्लाहिल्लिया, और बात तो अल्लाह ही की सच्ची है, ऊँची वही रहेगी। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त भी और हिकमत वाला है। तो करो क्या फिर? इन फिरो, इस पर गौर कीजिएगा, इन फिरू खिफाफम वसिकाला, निकलो, यानी प्रवोक किया जा रहा है, निकलो। आप कहते हैं नहीं निकल रही, मजबूरी है, मुश्किल है, परेशानी है, का खिफाफम वसिकालन, हल्के हो या बोझल निकलो। अब ये दो लफ्ज़ हैं, हल्के और बोझल, लेकिन इसमें क़यामत छुपी हुई है। इससे इन लोगों की कैफियत मुराद है, जिसमें एक अंदर का पहलू है दाखिली और एक खारजी। ये जुमले नोट कर लीजिए, शायद आज की इस पूरी सूरत में से हमें यही फ़ायदा दे दें। बोझल दिल के साथ निकलो या मादगी के साथ निकलो, निकलना तो पड़ेगा। अब बात रगबत की नहीं रह गई, चॉइस की नहीं रह गई, कोई तुम्हें रगबत दिलाए, कोई तरगीब दिलाए तो निकलोगे, नहीं, ये नफीर आम है, तुम्हें निकलना पड़ेगा, ये फ़र्ज़ आइन है। और इसका एक दूसरा पहलू क्या है कि तुम्हारे पास साजो सामान है के नहीं, असलहा है कि नहीं, तब भी निकलो, और अगर साजो सामान कब है फिर भी निकलना पड़ेगा। वजाहिदू बी अमवालिकुम, और अपने माल लगाओ, मालों के साथ जिहाद करो। वनफुसिकुम, और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्तों में। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो। ज़रा सा सोचते हैं, इनायतों पर गौर की ज़रूरत है। आप देखिए, जब हमारी ज़िंदगी की कोई तबूक आती है, हम सोचते हैं नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरा इल्म बहुत थोड़ा है, और अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, और अभी तो ईमान ही नहीं आया, मैं कैसे निकलूँ, और अभी तो मेरे हालात ही ठीक नहीं, अभी तो मेरे शौहर ही मेरा साथ नहीं दे रहे, अभी तो मैं अपने ख़ानदान में पहली हूँ। तो यहाँ आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं। और वो क्या? याद रखिए, आप और मैं अपने ईमान में कमी बेशी देखते हैं ना, ये फितरी सी बात है, ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। एक रिवर्स एक्शन का नाम सुना हुआ आपने? आपके पास 10,000 करोड़ है, आप कहते हैं मेरे घर में पड़े हैं, बैंक में पड़े हैं, फायदा क्या होगा। आप जाकर उन 10,000 को किसी चलते कारोबार में कहते हैं ये लगा लो, चलो हर महीने 200 भी अगर ऊपर आ गए तो मेरा क्या बिगड़ा, 200 भी ले लूँगा और जब दिल चाहेगा अपना सरमाया वापस ले आऊँगा। जिस तरह हम माल इन्वेस्ट करते हैं ना, तो माल एक किस्म का कैपिटल या सरमाया बन जाता है ना, इसी तरह अब लिखिए, हम अपना इल्म नंबर एक, अपना ईमान, और नंबर तीन अपने जज्बात। जब हम इनको अल्लाह के रास्ते में इन्वेस्ट करते हैं ना, इसे जिहाद के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये और भड़के वापस आते हैं। मैं फिर बोलती हूँ आपके सामने, हम कहते हैं है ही थोड़ा, अल्लाह कहते हैं थोड़ा ही लेकर आओ ताकि ज़्यादा करूँ। यदि आप कहते हैं 10,000 से क्या काम शुरू होता है, लो 10,000 करोड़ से कारोबार शुरू होता है, जब मेरे पास 1 लाख होगा फिर शुरू करूँगा। नहीं, अल्लाह कहते हैं इस 10,000 से सामान खरीदो, रात को 500 बढ़ जाएगा। जिस तरह माल थोड़े से थोड़ा करते हुए कैपिटल बढ़ता जाता है ना, इसी तरह जब मैं और आप, हमारे अंदर थोड़ा सा ही अभी ईमान है, अभी हमारे पास इल्म भी बहुत थोड़ा है, हमारे इस्लाम के लिए जज्बात भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इनको पकड़िए, इसको इन्वेस्ट कीजिए, अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद में लगा लीजिए, आप देखेंगे ये पलट कर आएंगे। किसी को फ़ायदा हो ना हो आपके उस थोड़े ईमान, थोड़े इल्म, थोड़ी सलाहियतों, थोड़े जज्बात से, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। हार भी आएंगे, नुकसान भी कर आएंगे ना, लेकिन आपका ईमान बढ़ेगा। फिर दूसरी बात देखिए, हल्के और भारी होने में तबीयत का मेलान है, जज्बात का दखल होता है दीन के कामों में। जब तबीयत आमादा होती है ना किसी काम पे, तो काम आसान हो जाता है। ऐसे ही है ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हुए को कभी देखा है? कभी उनके चेहरों की खुशी और मुस्कुराहट, क्यों? क्योंकि दिल चाह रहा होता है कि इस पहाड़ को सर करें। जब किसी काम पर दिल चाहता है ना, तो इंसान उस काम को खुशी खुशी करता है। जैसे किसी अपने प्यारे के लिए खाना पकाना है, तो खुशी खुशी उठते भागते, अपनी पसंद के मेहमान आए तो हमारी पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, 4 नहीं 6 सालन बनाएंगे, करते हैं ना। और अगर कोई ऐसा आ जाए बेचारा जिसके ऊपर दिल नहीं है, तो दो खाना जो रोज़ पकता है उसके ऊपर भी तबीयत नहीं होगी। तो यहाँ मुराद क्या है, तुम्हारा दिल चाह रहा काम करने को या नहीं करना, करो। क्योंकि दिल चाहने लग जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप पहाड़ पे चढ़ता देखते हैं लोगों को, और अगर जब दिल नहीं करता, कभी आपने देखा होगा बस सिर से मग़रिब के बीच में बैठ के पढ़ रहे हो, इस रूम में मैं कई दफ़ा इसका तजुर्बा करती हूँ, लाइट्स नहीं जलाते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, फिर मलगदा, फिर अंधेरा, फिर एक वक्त आता है कि दिल करता है लाइट जलाएं, वो है स्विच, मैं यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जाती, चलो अभी ऐसे ही पढ़ लो, अभी ऐसे ही पढ़ लो। जब दिल नहीं चाह रहा होता ना, तो सिर्फ 4 कदम से एक स्विच को ऑन करना भी मुश्किल लगता है, और दिल चाह रहा होता है तो हम वॉक के नाम पर घंटों भागते। हम 1 घंटा वॉक में भाग लेंगे, लेकिन हम नमाज में क्याम में नहीं खड़े होते। असल बात इधर में दिल के चाहने की है। तो क्या कहा जा रहा है, इन फिरु खिफाफ हम वसे कालन, हर किस्म के हालात में निकलो। दिल चाहता है निकलने को तो भी निकलो, नहीं दिल चाहता तो भी निकलो, तबीयत आमादा है तो भी निकलो, तो भी निकलो, खुशी खुशी निकलो, जबरन निकलो, किसी के कहने पे निकलो, अपने निकलो, करो 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 करो। अब एक यहाँ शैतान बहुत बड़ा हथियार लेकर आता है, कहता है लो जब काम में दिल जो नहीं लग रहा, जब मुझे ये काम करने का शौक ही नहीं, तो कबूल कैसे होगा, ये तो मुनाफ़क़त है। यानी मैंने कई लोगों से ये बात सुनी है, हम नमाज़ नहीं पढ़ते क्योंकि दिल नहीं करता, तब पढ़ेंगे जब दिल करेगा। अच्छा, अब इसको भी ले लीजिए, आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, मिसाल है कि आपने क्लास की कमिटमेंट की है, अब नहीं दिल कर रहा, मैं आपको कॉल कर दूँ, कोई आपको करते, आप कहते जब मेरा नहीं दिल कर रहा तो मैं क्यों जाऊँ, ये तो मुनाफ़क़त है। यहाँ ये भी समझिएगा, असल ईमान ही ये है कि जब तुम्हारा जिन नेकियों पे दिल नहीं कर रहा वो भी करो, क्योंकि मुनाफ़क़त क्या है आपको पता है, वो करो जिसको दिल करता है। तो ये उल्टा फेर शैतान हमारे साथ चलाता है, और वो क्या है कि चूंकि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा ना, तो तुम ना करो, वरना तो ये मुनाफ़क़त होगी। हालांकि ईमान दिल चाहे या ना चाहे मान जाओ, मुनाफ़क़त क्या है, लिख लें एक बड़ा सा जुमला बुलेट और जेम बना दीजिए इस सूरत का, मुनाफ़क़त क्या है, सिर्फ अपनी चाहत की नेकियां करने का नाम, मैं सिर्फ वो करूंगी जिसमें मुझे मज़ा आता है। जबकि ईमान क्या है, मोमिन कौन है, नफ्स के तकाज़ों को कुर्बान करने वाला, अल्लाह के हुक्म को कुर्बान नहीं करता। मुनाफिक के ना करने के 100 बहाने, अल्लाह कहते हैं ज़बरदस्ती भी करोगे तो इसका अजर मिलेगा। عبادہ بن سامت ایک بڑے پیارے صحابی تھے، ان کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. بیعت کیا ہے آج کے دور میں؟ آپ کہہ لیجئے کمٹمنٹ، پلیج کیا. کیا کیا؟ عربی کی بڑی خوبصورت عبارت ہے لیکن ترجمہ بتا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے اس چیز پر بیعت کی، ہر حال میں آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات مانیں گے. سمع و اطاعت، سننا اور ماننا، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی. اور تیسری بات کہتے ہیں کہ چاہے ہماری مرضی ہو، چاہے آپ ہم پہ زبردستی کریں، ہم پھر بھی آپ کی بات مانیں گے. یہ اللہ کی شان ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بات کہی کہ سفر دور کا اور قریب کا، اس میں کچھ مشکل لفظ ہیں، بعد میں لکھا دوں گی، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہر حال میں ان کے ساتھ تم لگے رہو، اگلی آیت میں آپ دیکھیے کہ اب ان کے نہ نکلنے کے جو بہانے ہیں، لو کان ارادن قریبم و سفرن قاصدن لتبعوا کا، اگر ہوتا سفر قریب کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو لتبعوا کا نبی، یہ آپ کی پیروی کرتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے اوپر تو مسافت بڑی طویل ہو گئی. ذرا سا انداز پہ غور کریں، منافق کا دل چاہ رہا ہے کہ مال غنیمت لے پر وہ دور پڑا ہوا ہے. دیکھیں نا، ہزار کا نوٹ ہے، ادھر پڑا ہوا ہے تو میں لے لوں گی، وہاں بھی لے لوں گی، لیکن مجھے کوئی کہتا ہے کہ 1000 کا نوٹ لینا ہے تو آپ پھر اسے سینٹر آ جائیں تو میں سوچ میں پڑ جاؤں گی، کیا میں اتنا واک کر کے جاؤں پھر لے کے نہ آؤں. تو منافقوں کے اسباب لکھے اس آیت کا ٹاپک، کہ منافقوں کے دین سے رکنے کی وجوہات کیا کچھ ہیں، کہ ہے مال غنیمت پر دور ہے، سفر بڑا لمبا ہے، اگر توقع ہوتی مال غنیمت آسانی سے ملے گا، ہدف بھی قریب ہے تو ضرور جاتے، لیکن تبوک کی مسافت کا سن کر تو ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے چونکہ اوپنلی بتا بھی دیا تھا اتنی دور جانا ہے تو ان کے لیے اور مشکل ہے. اچھا اب ہوا کیا، نہیں نکلے تو منافق کون ہے؟ پھر لکھیے ایک ڈیفینیشن منافق کی، گڈ ٹائم مسلمس. منافق کون ہوتے ہیں؟ جو گڈ ٹائم مسلم رہتے ہیں، اچھے وقتوں کے مسلمان، جب سب کچھ آسان ہو، راستے آسان، فائدہ فوراً حاصل ہونے والا، تو یہ آگے آگے ہر بات میں ماشاءاللہ. اور اپوزٹ بھی ہے، اگر نفس پر مشکل لگے نہیں کریں گے، اگر معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے فوراً کر لیں گے، خاندان ناراض ہو جائے گا چھوڑ دیں گے اس نیکی کو. فرار کا دروازہ ہمیشہ بہانہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک جم بنا دیں، فرار کے دروازے کا دوسرا نام بہانہ ہوتا ہے. یہ نقد کا شوق رکھتے ہیں، ان کو فوری چاہیے ہوتا ہے، اور باتیں کیا کہتے ہیں، ہاں ہماری مجبوری ہے، اور ویسے بھی ہم پہ فرض تو نہیں نا، اور ابھی مجھے تو اجازت ہی نہیں ملی. یعنی کئی نام ہوتے ہیں، اور اگر دولت قریب ہوتی تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہر کام آسان تھا، لیکن اصل بات یہ کہ ان کی نظر آخرت کے اجر پہ بھی نہیں اور اللہ پہ بھی نہیں. ایک جملہ لکھ لیں، جب کچھ نہ نظر آ رہا ہو، نہ فائدہ دنیا کا اور نہ کوئی دین کا فائدہ، پھر بھی اللہ کے رستے میں بلایا جائے، صرف ایک شخصیت ہے جو لبئی کہتی ہے اس پہ، اور وہ ہے مومن. ایسی محنت صرف وہ مومن کرتا ہے جو اللہ کی خاطر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میری اس کوشش سے فائدہ ہو رہا نہیں. منافق کیا کہتا ہے؟ فائدہ تو ہو نہیں رہا، کسی کو کچھ مل تو رہا نہیں، کر تو کچھ رہے نہیں، کوئی نتائج تو نظر آ نہیں رہے، لوگوں کو شوق تو ہے نہیں ہے. اور دوسری بات ایک اور بھی سمجھ لیں، منافق یہ سوچ کے نہیں یہ چھوڑتا کہ سب چھوڑا ہوا ہے. ایک جملہ کہتا ہے، کیا ہوا، جہاد نہیں کر رہے نا، نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہم نماز روز آج کریں بس اتنا ہی کافی ہے. دیکھو نا، ہم نے دین اور دنیا کا اتنا اچھا توازن بھی تو قائم کیا ہوا ہے نا. آپ کو یاد ہے پیچھے آیت پڑی تھی، شاید 23 آیت تھی نا، 8 چیزیں کہ باپ، گھر دار اور ساری چیزیں، یہاں یہی رکاوٹیں بن گئی ہیں. آرام دہ گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن ان گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نکلنا یہ بہت مشکل ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ میرے نبی کے ساتھ چل پڑتے جنت میں ان کو اتنا خوبصورت گھر مل جاتا. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ ماننے کے سو بہانے. اب ہوا کیا، ہر بار یہ آپ کے ساتھ مجبوری ہے. منافقوں نے جب دیکھا کہ ایک بار پیچھے رہے، اگلی جنگ میں پیچھے رہے، اگلے دین کی کاز میں پیچھے رہے، تو ان کو لگا کہ لوگ تو اب کہنے لگ جائیں کہ کیا مسئلہ ہے، ہر دفعہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، تو اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ آئے. اور وہ کہتا ہے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے. اب قسمیں کھا کے یقین دلائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، युहलिकूना अनफुसहुम, ये अपने आप को हलाक कर रहे हैं। वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह खूब जानता है कि ये झूठे हैं कि सच्चे। तो बात का खुलासा क्या निकला कि निफाक का मरज़ बढ़ते बढ़ते झूठी कस्में खाने पे पहुंच जाता है। मेरे आपके लिए इस वक्त किसी दूसरी किसी इंसान को सोचना मकसद नहीं है। मैं अपने आप को और आप अपने आप को देखें, कोई किसी के हालात नहीं जानता। लेकिन याद रखिए कि ये एसिड टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। नमाज रोज़ा हज ज़कात बहुत आसान है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि ये नमाज़ें ईमान वाले की हैं या निफाक वाले की हैं। ये तब पता चलती हैं जब वाकई इंसान उन हालात से दोचार होता है। तो अपने लिए एक छोटा सा असूल बना लीजिए कि करना है मैंने, जो करना है वो मैंने करना है, मैंने किसी के लिए नहीं करना, मैंने दूसरों को फ़ायदा देने के लिए भी नहीं करना, मैंने ये काम अल्लाह के लिए करना है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सहाबे किराम के इस नक्शे कदम पे चला दे।
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون